का था, रूप वही रूप नया।
अभी उस दिन कांत के नथने फड़कने लगे थे और पर्चा लिखता लिखता वो थर थर कांप उठा था, लेकिन आज जैसे उसे हंसी आ गई। अपने साथी से बोला, कितनी बेवकूफी की बातें हैं। साथी गेहूं रंग का लंबा सा नवयुवक था, वो नया भर्ती हुआ था। इसी बात पर उसने एक दिन कहा था, मेरा जी चाहता है उसके गले पर अंगूठा रख के जोर से दबा दूं। आज भी उसने यही कहा। हाँ ये ठीक है, लेकिन तुम इसके परिणाम के लिए तैयार हो?
परिणाम की मुझे चिंता नहीं है, मेरे बदन में आग लगी हुई है। छोटे बाबू हमारी तरफ किरानी है,
क्या हुआ उसका वेतन कुछ अधिक है तो? उसे आदमी को झड़कने का कोई अधिकार नहीं है, ये सरकारी काम है। वो आगे कुछ कहता कि बड़े बाबू हाँफते हाँफते वहां आ गए। बोले, आज की डाक से ये केस जाना है, भाई जल्दी तैयार करो।
लाल फीते में बंधे हुए कुछ कागज लेकर निशिकांत का साथी अपनी सीट पर चला गया। बड़े बाबू कांत से बोले,
तुम जरा छोटे बाबू के पास चले जाओ, मुझे कुछ प्राइवेट लिफाफों की जरूरत है।
तब कांत ने अपने सामने बड़े बड़े रजिस्टरों को समेटते हुए जवाब दिया,
जी मैं उनके पास नहीं जाऊंगा।
क्यों? क्योंकि वो आदमी से कुत्ते की तरह बोलता है।
कुत्ते की तरह? अचकचा कर बड़े बाबू बोले।
जी हाँ, जब से उसके पैसे बढ़े हैं वो आदमी को आदमी ही नहीं समझता, गाली देता है। ऐसे कमीने लोगों से हम कोई वास्ता नहीं रखना चाहते।
उसे ऐसा नहीं करना चाहिए, बड़े बाबू ने कहा।
बेशक चाहिए तो नहीं, परंतु मेरा विश्वास है जब तक उसके गाल पर तमाचा नहीं लगता ना, वो ऐसा ही चाहता रहेगा।
कांत कहते कहते क्रोध से भर उठा, उसकी मुट्ठियां भींच गईं और आंखें लाल हो गईं। बड़े बाबू ने अचरज से उसे देखा और कहा,
मैं समझा दूंगा। अच्छा।
दफ्तर में घुसते ही बाई ओर के कमरे में बैठे हुए छोटे बाबू को कोई नहीं भूल सकता। वो नाटा आदमी है, उसका रंग सांवला है, उसका शरीर सुडौल है और हर एक पोशाक उस पर जचती है। कोट पैंट या पजामा अथवा सलवार कुछ भी पहन ले, उस पर बुरी नहीं लगती। वो अपनी सीट पर बैठकर जब सिगरेट का लंबा कश खींचता है तो पीड़ा उसकी आंखों से झलक पड़ती है। उसके पतले मुख पर उस्तरे की रगड़ से जरूरत से ज्यादा कालापन उभर आया है और हर वक्त की झुंझलाहट के कारण वो बड़ा चिड़चिड़ा हो गया है। कभी कभी लंबे और टेढ़े केशों पर विद्वतापूर्ण टिप्पणियां करते करते उसकी आंखें छोटी और चमक उठती हैं। वो बहुत चतुर चलता किरानी है, पर दफ्तर के दूसरे बाबुओं को उसकी विद्वता पर जरा भी गर्व नहीं है। यही बात उसे खटकती है। किसी उलझे हुए केस को सुलझाने के बाद जब वो अंगड़ाई लेकर उंगलियां चटकाने लगता है तो उसकी सूरत देखने योग्य होती है। वो चारों ओर नजर डालकर अपने साथी से कहता है,
मैं अब यहां नहीं रहूंगा।
उसका साथी भारी बदन का आदमी है, उसका चेहरा चेचक के दागों से भरा हुआ है। लेजर लिखते लिखते वो छोटे बाबू की तरफ देख लेता है और मुस्कुराकर फिर अपने काम में लग जाता है। मानो कहता है, तुम आज ही जा सकते हो, सरकारी काम क्या अटका रहेगा? तुम नहीं तो तुम्हारा कोई दूसरा भाई आके करेगा। और यही बात अपने साथी की मुस्कुराहट में पढ़कर छोटा बाबू ऊपर से नीचे तक जल जाता है। लोग मेरी जरा भी परवाह नहीं करते, जबकि साहब मेरी तारीफ करते करते नहीं थकते। सचमुच साहब समझते हैं कि दफ्तर में से छोटे बाबू को निकाल दिया जाए तो कुछ नहीं रहता। ये बात उसने काफी बार साफ कही भी है। गोरे अफसर का मुंह कौन पकड़े? और यही बात दूसरे बाबुओं को खटकती है। अपना अपना काम सभी करते हैं, इस बाबू में फिर कौन सी विशेषता है? और ऐसे वक्त यदि कमबख्ती का मारा चपरासी उसके कमरे में चला जाए तो फिर समझिए खैर नहीं। दिल की सारी भड़ास वो उस पर निकालता है।
उल्लू का पट्ठा सुअर, चला जाए यहां से।
चपरासी कहता है, अरे बाबूजी हरामजादे बेईमान। गाली मत दीजिए बाबूजी।
छोटे बाबू का पारा और भी तेज होता है।
सुअर का बच्चा क्या कहता है, गाली ना दो। हाँ तुम तो बड़े नवाब के बच्चे हो ना, मैं कहता हूं चले जाओ नहीं तो पीट दूंगा, जरा भी काम नहीं करने देते कमबख्त।
चपरासी लौट जाता है। कभी वो तेज हो जाता है तो खूब ठन जाती है और चेचक के दागों वाले बाबू को बीच बचाव करना पड़ता है।
लेकिन ऐसा उस वक्त होता है जब साहब गैर हाजिर होता है। एक दिन सुना ऐसी ही बात पर दफ्तरी ने छोटे बाबू के रूल खींच के मार दिया। ये बात पुरानी है और कहते हैं बहुत दिनों तक छोटे बाबू सबसे हंस हंस कर उसी तरह बातें कर रहे थे और इन्हीं दिनों छोटे बाबू से निशिकांत का झगड़ा हो गया। वैसे तो बहुत दिनों से उसका मनमुटाव चल रहा था। पिछली 6 जनवरी को एक केस में किसी बहुत पुरानी फाइल की जरूरत पड़ी थी। बड़े बाबू ने कहा
छोटे बाबू को पता होगा उसने ये काम किया था।
लेकिन जैसे ही निशिकांत ने छोटे बाबू के कमरे में प्रवेश करके उनसे कहा क्या आप कृपा करके, तो छोटे बाबू चीख पड़े चला गया यहां से, मैं कुछ नहीं जानता। निशिकांत क्षण भर के लिए स्तंभित चकित से रह गए। क्रोध उमड़ आया लेकिन न जाने क्या सोचकर अपने आप को संभाल लिया। कहा अरे तुमने तो कमाल कर दिया, और वो लौट आया। उसने बड़े बाबू से बिना कुछ कहे केस की फाइल उनकी मेज पर पटक दी। उस दिन से दोनों की बोलचाल बंद थी। दोनों एक दूसरे को नमस्ते भी नहीं करते थे। और मजेदार बात यह थी कि सुबह सुबह सबसे पहले वे दोनों ही दफ्तर आते थे। वे गुन मथुन से एक दूसरे की तरफ देखकर अपनी अपनी सीट पर बैठ जाते और काम करने लगते, क्योंकि उन दोनों के अतिरिक्त उस वक्त दफ्तर में कोई होता ही नहीं था। उनके हृदय अंदर ही अंदर जल भुनकर खाक होते रहते। वे कभी सांस लेने के बहाने झांक झांक कर एक दूसरे को देख लेते और आंखें मीचने का अभिनय कर कुर्सी की पीठ पर झुक जाते। और जब भी तीसरा आदमी उन दोनों में से किसी के कमरे में आता तो वे एक ही प्रश्न पर वाद विवाद करने लगते। छोटे बाबू के कमरे में बातें होती थीं,
क्यों जी कांत ने आज क्या कहा?
अरे कहेंगे क्या, मेरी बुराई करते होंगे कि मैं बदमिजाज हूं, नालायक हूं।
सच?
अरे और क्या रे,
उसने बड़े बाबू से मेरी शिकायत की लेकिन मैंने तो कह दिया भाई मेरा दिमाग ठीक नहीं हो सकता।
अरे वो अपने को समझता क्या है?
या हाँ हाँ बेशक बेशक,
एक बाबू ने कहा। और तुमने सुना उसने साहब के पास जाकर अपनी सदाचार पत्रिका में कितने अच्छे रिमार्क लिए।
वाह शानदार,
खजांची ने अचकचाकर पूछा। वो साहब के पास गया था?
अरे गया ही होगा,
नहीं तो क्या साहब इतना भला मानस है कि उस जैसे आदमी के लिए शानदार काम लिख देगा?
हो सकता है, उसके एक साथी ने टिप्पणी की।
जनाब अब मुझसे बातें नहीं करते हैं, काम होता है तो पर्चा लिखकर भेजते हैं जैसे बहुत बड़े लाट साहब हैं।
उसका साथी बीच में ही बोल उठा, इसीलिए छोटे बाबू को रुकना पड़ा।
अरे तुम जब आदमी से कुत्ते की तरह बात करते हो, उसे झड़कते हो तो वो क्या करे?
मैं?
छोटे बाबू फिर कुछ कहते कि चपरासी ने एक पर्चा लाकर दिया और बोला
कांत बाबू ने किताब जल्दी मांगी है।
छोटे बाबू अंदर ही अंदर जल रहे थे। पर्चा देखकर आग बबूला हो गए। पर्चे को मुट्ठी में महसूस कर परे फेंक दिया और कहा
जाओ, कह दो मेरे पास पर्चा अर्चा भेजने की जरूरत नहीं है।
चपरासी हंस पड़ा और पर्चा उठाकर उसने कांत बाबू को जाकर दे दिया। कांत बाबू क्रोध से पागल हो उठे, उनके नथने फड़कने लगे। उसने उसी चिट पर लिखा छोटे बाबू तुम्हारे पास आदमी जाता है तो तुम कुत्ते की तरह झड़कते हो, पर्चा लिखते हैं तो तुम बिगड़ते हो, आखिर तुम चाहते क्या हो? सरकारी काम तुम्हारी वजह से रुक नहीं सकते, और अगर तुम समझते हो कि काम करने का हक सिर्फ तुम्हें ही है तो साहब से कहकर सारे दफ्तर का चार्ज ले लो, हम अपना रास्ता देखेंगे, नहीं तो तुम्हें आदमी के साथ आदमी की तरह बर्ताव करना चाहिए, समझे? सबके पास दिमाग है और सबके पास हृदय, न जाने क्या हो जाए। भवदीय कांत। चपरासी के हाथ ये पर्चा उसने छोटे बाबू के पास भेज दिया और 2 मिनट में ही उनका जवाब आ गया। छोटे बाबू ने लिखा था तुमने गलत समझा होगा, मैं कभी भी किसी से भी कोई बुरा बर्ताव नहीं करता, तुम हमेशा अपने आदमी को मेरे पास भेज सकते हो, जो तुम चाहोगे वही किताब या केस भेज दूंगा। कांत ने यह पढ़ा तो उसे और भी क्रोध आ गया। उसने फिर लिखा छोटे बाबू तुम सरासर झूठ बोल रहे हो, तुम सदा आदमी को झिड़कते हो और गाली देते हो, अगर तुम इतने भोले और नम्र व्यवहार करने वाले हो तो क्यों सब लोग तुम्हारे पास जाने से मना करते हैं? तुम शेर नहीं हो जो फाड़ खाओगे, इस बात का तुम्हारे पास क्या जवाब है? तुम हमारा भी लिहाज नहीं करते, हम लोग तुम्हारे साथी हैं और वर्षों से तुम्हारे साथ काम करते आ रहे हैं, तब तुम्हारा क्या एतबार? आज ही मामला साहब के सामने पेश होना ही चाहिए,
हम लोगों ने अपने इस्तीफे लिख लिए हैं, तुम हमें निकालना ही चाहते हो तो हम तैयार हैं, लेकिन खूब दिल की निकाल कर ही निकलेंगे। भवदीय कांत। कांत लिख रहा था तो उसका हाथ फिसल पड़ता था और अक्षर तिरछे टेढ़े मेढ़े बन रहे थे। वो थर थर कांप रहा था। लेकिन अचरज, उस चिट पर छोटे बाबू ने लिखा, मैंने आपके दिल को ठेस पहुंचाई, इसके लिए मैं क्षमा मांगता हूं, मुझे सदा अपना सेवक समझें। कांत ने एक बार दो बार उस चिट को पढ़ा और उसकी कपकपी सहसा थम गई। उसने मन ही मन कहा, कैसा चालाक आदमी है। लेकिन उसका मन खेल उठा था और वो समझ रहा था ये मेरी विजय है। उसने फिर चिट पर जवाब लिखा, छोटे बाबू, माफ वही कर सकता है जो सजा दे सकता है। मुझसे माफी मांगना सरासर धोखेबाजी है। दफ्तर के काम होने चाहिए, मैं बस यही चाहता हूं। मैं तुम्हारे जैसे आदमी से कोई भी ताल्लुक नहीं रखना चाहता। दफ्तर से बाहर मेरा तुम्हारे से संबंध ही क्या है। मैं समझता हूं तुम्हें ये शब्द लिखते हुए कितना कष्ट हुआ होगा। कृपा कर आप अपने शब्द लौटा ले। भवदीय कांत। कांत ने यह लिख तो दिया पर भेजा नहीं। लिखा भी कई बार था। यह चिट कहीं चौथी बार जाकर ठीक ठीक बनी थी, फिर भी उसने उसे जेब में डाल लिया। वो नहीं चाहता था ये माफीनामा व्यर्थ जाए। इस माफीनामे के बूते पर वो छोटे बाबू को नीचा दिखा सकता है। और उसने अपने साथी को बुलाकर सचमुच वो पर्चा दिखा दिया। साथी ने अचरज से पढ़कर कहा, छोटे बाबू ने माफी मांगी? बिल्कुल झूठ। अरे तुम देख सकते हो, उसने ही लिखा है। लेकिन मैं इस पर्चे को संभाल कर रखूंगा। अरे रखना ही चाहिए, कांत के साथी ने कहा। और तुम्हें पता है उसने बड़े बाबू को क्या जवाब दिया है? क्या दिया है? यही कि मैं कांत से मजाक किया करता हूं, वो बुरा मान गया होगा। मजाक? हाँ, कांत हंस पड़ा। बड़ा अजीब आदमी है, कितना होशियार, कितना धूर्त और कितना कायर। निशिकांत ने समझा, चलो झगड़ा यहीं खत्म हो गया। लेकिन चार दिन बाद ही उसकी आशा काफूर हो गई। उसने जो कुछ सुना उस पर उसे हंसी आए बिना न रही। उसने अपने साथी से कहा, कितनी बेवकूफी की बात है। साथी ने कहा, वो तुम्हारे खिलाफ खूब प्रोपेगेंडा कर रहा है। मुझसे कहता था तुम्हारे अफसर साहब का मिजाज गर्मा गया है। सच? हाँ। और अभी उसने कल टाइपिस्ट से कहा, कांत बाबू बड़ा बदमिजाज है, उसे ठीक करना चाहिए। लेकिन सबसे बढ़कर विचित्र बात तो ये थी जो खजांची ने बताई। उसने कहा कि छोटे बाबू कल बड़े क्रोध में थे और कहते थे कांत मुझे निकालने पर तुला हुआ है। मैं? कांत ने अचकचा कर कहा, और कहता था कि उसने अब साहब से साठगांठ लगाई हुई है। कांत हंस पड़ा। उसने कहा, मैं तो साहब की सूरत भी नहीं देखना चाहूंगा, उसका प्रेम पात्र बनना तो स्वप्न में भी दूर है। प्रत्येक किरानी ने उसे कुछ ऐसी ही बातें बताई। आश्चर्य, उसे तनिक भी क्रोध नहीं आया। उसे छोटे बाबू से जो घृणा हो चली थी वो नष्ट हो गई थी। उसके स्थान पर दया उमड़ आई और वो मन ही मन बहुत हंसा। ये किरानी भी कितना विचित्र जानवर है। उसने निश्चय किया, आज वो उसे अवश्य पराजित कर देगा, ऐसा पछाड़ेगा कि वो बोलने का नाम भी न लेगा। उसने अपने साथी से कहा, आज मैं उससे अकेले में बातें करूंगा। साथी चौंक कर बोला, मगर उसने कुछ ऐसा वैसा कहा तो तुम्हें गुस्सा आ जाएगा और फिर हाथापाई का डर है, वो बदमिजाज आदमी है। कांत ने कहा, अरे मैं उसके लिए काफी हूं, पर मैं तुमसे कहता हूं उसमें हिम्मत जरा भी नहीं है। हो सकता है, साथी ने कहा, फिर भी साहब उसके हाथ में है, उसके मुंह लगना ठीक नहीं है। कांत, माना कि बड़े बाबू से तुम्हारी नातेदारी है, पर बड़े बाबू उससे कांपते हैं, कांपते। कांत ने कहा, अरे देखते रहिए क्या होता है। और उसी संध्या को जब सब किरानी चले गए थे, वो दफ्तर में बैठा रहा। दिन ढल चुका था और दफ्तर के पश्चिमी द्वार से होकर सूरज की अंतिम किरण दरख्तों के झुरमुट पर पड़कर गायब हो गई थी। कांत अपनी कुर्सी छोड़कर स्टोर कीपर की कुर्सी पर आ बैठा ताकि छोटे बाबू को देखता रहे। उसने आंखें बंद कर ली, कभी नजर चुराकर उधर देख लेता था। वो ध्यान मग्न होता जा रहा था, पर शरीर न जाने क्यों कांप कांप उठता था। विचारों का चक्कर उसे रह रहकर झकझोर डालता था। मैं उससे कह दूंगा,
तुम किस बिरते पर इतना कूदते हो? तुम्हारे कुछ पैसे जो बढ़ गए हैं?
छी छी, तुम इतने कमीने हो कि जरा सी तरक्की पर अपने सब साथियों को आदमी नहीं समझते।
छोटा बाबू खिसियाना सा होकर कहेगा कि लेकिन उसे छोटे बाबू का कहना याद ही नहीं आता था। वो तो अपनी ही बात सोचता चला जा रहा था कि वो कहेगा, इस दुनिया में है ही क्या प्रेम और मोहब्बत? तुम किसी से प्रेम भरे दो शब्द कहोगे तो कोई तुम्हें भी वही कहेगा। तुम एक बार ऐंठोगे तो दुनिया तुमसे लाख बार ऐंठेगी। और तुम समझते क्या कि तुम बहुत शक्तिशाली हो और तुम्हारे विरोधी दब्बू और आश्रयहीन हैं? कहता हूं, दुश्मन आटे का भी बुरा नहीं होता, न जाने कब आ दबावे। हम तुमसे दफ्तर में नहीं जीत सकते तो हमारा हाथ किसने पकड़ा है? किसी दिन गले पर अंगूठा रख देंगे। निराश आदमी परिणाम का विचार नहीं करता।
तुम होशियार हो ये तो हम मानते हैं,
अरे पर हृदयहीन, बुद्धि तुम्हारी तुम्हें पतन की ओर ले जा रही है। जिस आदमी में आदमियत ही नहीं उसकी सुंदरता पर दुनिया थूकती है। और ऐसे ही सोचते सोचते उसे झपकी आ गई और उसने देखा कोई चुपके चुपके उसके पीछे से आ रहा है। वो पदचाप सुन रहा है पर बोल नहीं सकता। आगंतुक ने आहिस्ता से अपना हाथ उठाया और उसके गले को दबोच लिया।
अरे अरे ये तो छोटे बाबू।
वो तड़फड़ा उठा, उसने चीख मारनी चाही और उसकी आंख खुल गई। चौंककर उसने देखा कि वो सब सपना था। उसका दिल धक धक कर रहा था पर उसे हंसी आ गई। उसी समय उसने देखा छोटे बाबू खट खट करके पैड़ियां उतर गए हैं। वो झपटा और कांपता कांपता बोला, मैं भी आ रहा हूं। छोटे बाबू हठात रुक गए। कांत की अवस्था उस समय अद्भुत थी। वो थर थर कांप रहा था और उसके मुंह से उखड़े उखड़े शब्द निकल रहे थे। वो कई महीने बाद छोटे बाबू से बोला था। उसने कहा, आपकी सलाह क्या है? छोटे बाबू मुस्कुरा उठे। आपका मतलब?
मतलब आपने मेरे विरुद्ध जो प्रोपेगेंडा फैलाया है और जो कुछ आप आजकल कर रहे हैं।
छोटे बाबू बीच में ही बोल उठे, ओह तो ये बात है। अरे हमारा आपका क्या झगड़ा? मैंने जानबूझकर ऐसा किया था।
जानबूझकर?
कांत की आवाज तेज थी। हाँ, कि तुम्हें क्रोध आए। लेकिन तुम छोड़ो भी इन बातों को, गलती मेरी ही थी। मैं 6 जनवरी वाली घटना से बड़ा लज्जित हूं, क्या तुम मुझे क्षमा नहीं कर दोगे?
कांत इसके लिए तैयार नहीं था। उसका दिल बातों से भरा हुआ था। उसने कहा, लेकिन तुमने तो टाइपिस्ट से कहा था कि।
छोटे बाबू बीच में ही बोल उठे। उसे रुकना पड़ा। उसकी कंपकपी दूर हो गई थी और वो मुस्कुरा रहा था। छोटे बाबू ने कहा,
मैं मानता हूं मैंने जहर उगला, पर आप मुझे माफ कर दें। वस्तुतः मुझे चढ़ गई थी। मैं समझ ही नहीं पा रहा था कि मैं तुमसे कैसे क्षमा मांगू।
कांत हंस पड़े। और ये ना जानकर कि कैसे क्षमा मांगू मुझे उल्टी गाली सुनाते चले गए।
छोटे बाबू खिसिया गए।
अरे मेरे दिमाग में पत्थर पड़ गए थे, पर आपने मुझे क्षमा मांगने का अवसर दिया इसलिए मैं बड़ा कृतज्ञ हूं। हम कभी भी नहीं लड़ेंगे, कभी नहीं झगड़ेंगे। पर आपने भी मुझे कैसे लिखा कि मैं आपको निकालने पर तुला हुआ हूं? आप ऐसा कैसे सोच सकते हैं?
कांत ने कहा, मैं तो बहुत कुछ सोच चुका हूं। ये मेरी गलती हो सकती है, लेकिन पहले आपकी तरफ से हुई उसका मैं क्या करता।
आपने तो कमाल कर दिया।
मैं लज्जित हूं, उसने कहा,
पर मैं क्या करूं? मेरे पास इतना पेचीदा काम है कि मैं पागल हो जाता हूं। मैं मानता हूं कि किसी को झिड़कने का मुझे कोई अधिकार नहीं है और मैं अपने स्वभाव को सुधारने का उद्योग करूंगा। देखो ना मैं कितना झुरता जा रहा हूं।
बेशक, इस तरह तो आप बहुत जल्दी मर भी जाएंगे।
आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए, आखिर ये घिस घिस जीवन के लिए ही तो है।
हाँ हाँ, वो तो है वो तो है, छोटे बाबू ने कहा।
मैं कल साहब से कहूंगा, मैं इतना काम नहीं कर सकता, मेरा दिमाग खराब होता जा रहा है। और देखो ना, लोग मेरे इतने विरुद्ध होते जा रहे हैं कि मुझे डर है मैं अपनी जान न खो बैठूं। जरा सी देर में 2 पैसे का आदमी मेरी इज्जत उतार ले सकता है। कांत, मैं आपका जन्म जन्म आभारी रहूंगा, आपने मुझे क्षमा मांगने का अवसर देकर गिरने से बचा लिया।
कांत अपनी सारी बातें भूल गया। उसने भरे हृदय से कहा,
अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं जी, गलत फहमी भी दूर हो गई, ये अच्छा हुआ। दुनिया है ही क्या, प्रेम और मोहब्बत से बोलना ही तो है। अच्छा तो मैं चलता हूँ। छोटे बाबू बोले, कल संध्या का भोजन मेरे घर करना। अच्छा अच्छा अच्छा, मीठी डिशेस तैयार करवाना। अरे जरूर जरूर। अच्छा नमस्ते जी, नमस्ते। कांत लौट चला। बातें करते करते वे बहुत दूर चले गए थे। अंधेरा काफी गहरा हो चुका था और सड़क बिजली की रोशनी से जगमग कर रही थी। उसने पास से निकलते हुए आदमियों को गर्व से देखा। उसका हृदय कह रहा था, देखा शेर को उसके घर में कैसा पछाड़ा। हालांकि कांत के दिल की बात दिल में ही रह गई, पर उसे अब कुछ भी याद नहीं था। केवल आने वाली कल की धुंधली स्मृति उसके मस्तक में मंडरा रही थी। बारी बारी सब किरानी कह रहे थे, कांत विजय हुआ, कांत विजय हुआ, अरे हम सब तो कांत के कृतज्ञ हैं। और वो सहसा चौंक पड़ा। अपने मोहल्ले में घुसते घुसते वो अपने पड़ोसी से टकरा गया। उसने कहा, मैं क्षमा मांगता हूं।